दास्तान एक घड़ा पानी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद बलखी ईरान के अजीम शायर ने हिकायत की है कि कदीम जमाने में एक हाकिम था जो जूदो सखा में मशहूर था। उसकी इतनी शोहरत थी कि कुछ लोग उसे हातिम ताई के बराबर और कुछ उसे सखावत में उससे भी बढ़कर समझते थे। ये हाकिम मुस्तकिल तौर पर फकीरों और सितम के मारे हुओं की मदद को पहुंच जाता था और उनकी हर तरह हाजत को पूरा करता था और कोई भी उसके दर से खाली न लौटता था। उस हाकिम के दौर में एक अरब शौहर और बीवी थे जो फक्र व फाके में जिंदगी गुजार रहे थे। बीवी सालह साल से फक्र व बदबख्ती को बर्दाश्त कर रही थी और हर्फ शिकायत कभी जबान पर न लाती थी। यहाँ तक कि एक दिन उसकी ताकत जवाब दे गई और उसने अपने शौहर से कहा, सिर्फ हम ही पर क्यों ये रंजो अजाब नाजिल हो और हमेशा हम ही भूखे प्यासे रहें, जबकि दूसरे लोग इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। शौहर जो पहली बार अपनी बीवी से ऐसी बातें सुन रहा था, ताज्जुब और हैरत से सुनता रहा। बीवी ने जब शौहर को हैरत ज़दा देखा तो कहा, मेरी बातों से हैरत क्यों हो रही है तुमको? मैं सालहा साल से फक्र व बदबख्ती में गुजारा कर रही हूँ। इसी हालत में मेरा वजूद जल गया है, खत्म हो गया है, लेकिन मैं कभी हर्फ शिकायत जबान पर न लाई, लेकिन अब मुझ में मजीद तंग दस्ती सहने की ताकत नहीं रह गई है। शौहर एक कानी शख्स था और मुसलसल शुक्र खुदा बजा लाता था। वो कभी भी फक्र व तंगदस्ती का रोना नहीं रोता था। जब उसने बीवी की ये बातें सुनी तो उससे कहा, तुम्हें माले दुनिया का इतना रंज नहीं होना चाहिए, ये तो बस आता जाता रहता है। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम सेहतमंद और सालिम बदन के मालिक हैं। बीवी जो हैरान और परेशान अपने शौहर की बातें सुन रही थी, गमगीन होकर खाली दस्तरखान की तरफ देखने लगी। शौहर ने अपनी बात जारी रखी, क्या तुमने नहीं देखा कि छोटी छोटी चिड़ियां और बुलबुल जो भी मिलता है खा लेती हैं और खुदा का शुक्र अदा करती हैं और कभी भी हर्फ शिकायत लबों पर नहीं लाती। दुनिया के मालो मनाल पर एतमाद नहीं किया जा सकता। क्या तुम समझती हो कि मालो दौलत वाले खुशकिस्मत हैं? जो भी शीरीन जिंदगी गुजारता है तलखी में मर जाता है। जो भी तन परस्त है क्या वो जान नहीं देता? भेड़ों को सहरा से पकड़ कर लाते हैं, वो जो उनमें सबसे ज्यादा फरबे है उसे ज़िबह कर देते हैं। शोहर ने मजीद कहा, ए बीवी, मैंने कभी भी तुम्हें इस कदर नाशुक्रा नहीं देखा था। तुमने सालहा साल तक मेरे साथ फक्र तंगदस्ती में जिंदगी गुजारी और कभी भी शिकायत या गिला न किया। अब अचानक क्या हुआ कि शिकवा और शिकायत शुरू कर दी? जब जवान थी तो काने थी और अब बुढ़ापे के करीब आकर लालच में पड़ गईं। जवान थी तो काने थी, पहले खुद जर थी, अब जर तलब हो गईं। जब जर थी तो जैसे फलों से भरा प्याला, जब फल पक गए तो खुद फासिद हो गईं। फलों को पकने के बाद शीरी तर हो जाना चाहिए, पकने के बाद और चमकने लगे, न कि ये कि खराब तर हो जाए। बीवी ने अपने शोहर को अपनी बात पूरी करने दी और जब वो खामोश हुआ तो उसने अपनी आवाज बुलंद की, ऐ मेरे शोहर, मैंने तुमसे क्या मांगा है कि यूं बात कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे कहा है कि मेरे लिए एक महल तैयार करो या सर से पांव तक मुझे सोने में लाद दो? अगर मैंने इन तमाम सालों में फक्र तंगदस्ती में गुजारा किया है और हर्फ शिकायत जबान पर नहीं लाई हूं तो उसकी वजह यह थी कि मुझे आइंदा की उम्मीद थी कि हमारे हालात फिर जाएंगे। تمام آہ و سوز و گریہ کے بعد خوشیوں کی امید تھی، لیکن اب میں دیکھتی ہوں کہ یہ سب بیکار اور بےہودہ آرزوؤں سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ اس تمام مدت میں تم نے اپنی طرف سے کوئی بھی کوشش نہ کی کہ ہماری زندگی کچھ بہتر گزرنے لگے۔ شوہر نے پھر اپنی بیوی سے قناعت اور درگاہ خداوندی میں شکر کرنے کی باتیں کی، لیکن بیوی ڈٹی رہی اور اپنی بات پر اصرار کرتی رہی، یہاں تک کہ اس شخص کا صبر ختم ہو گیا اور وہ تیش میں آ کر بولا، اے عورت بس ختم کر، اگر میں فقیر ہوں تو مجھے اپنے فقر پر فخر ہے۔ بیوی نے جب دیکھا کہ شوہر سے کچھ بھی کہے اس کا جواب سخت سے سخت تر ہوگا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب ایک دوسرے حربے کو استعمال کیا جائے۔ پھر اس نے رونا اور آنسو بہانا شروع کر دیا۔ بیوی نے رونے کے درمیان کہا، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ شوہر میں بیوی کے گری اور زاری کی برداشت نہ تھی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بیوی کا گریا ایک آگ کے مانند تھا کہ جو اس کی جان پر آ گیا تھا۔ بیوی نے جب دیکھا کہ اس کا یہ حربہ کارگر ثابت ہوا ہے، تو اس نے مہربانی کے ساتھ شوہر کو دیکھا اور کہا، تم غمگین نہ ہو، میں تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر میں نے شکایت کی تھی تو اپنے لیے تو نہ کی تھی، تمہارے لیے کی تھی جو مجبور ہے کہ فقر و فاقے میں زندگی بسر کرے۔ بیوی نے اور باتیں کہیں، وہ بولتی گئی بولتی گئی بولتی گئی، یہاں تک کہ اس نے پھر رونا شروع کر دیا۔ شوہر نے بیوی کے آنسو دیکھے اور اس کی مہربانیوں کو یاد کیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ وہ اپنے لیے کچھ نہیں کہہ رہی ہے۔ اس کے دل میں غم و اندوہ کا ایک طوفان داخل ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، سچ کہتی ہو، میں ہی غلطی پر تھا، تم جو کچھ بھی کہو تمہیں اس کا حق ہے۔ بیوی نے اپنے شوہر کو اچانک اتنا مہربان دیکھا تو حیرت میں پڑ گئی۔ اسے گمان ہوا کہ شاید وہ اس کا امتحان لے رہا ہے، اس لیے اس سے کہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو یا مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ مرد نے محبت سے کہا، اے بیوی مذاق کیسا، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سچ کہہ رہا ہوں، اب تم جو بھی کہو گی میں اس پر عمل کروں گا۔ بیوی نے کہا، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہیں کیا کرنا ہے، مجھے بھی پتا چل گیا ہے کہ کس کام میں ہاتھ ڈالنا ہے۔ پھر بیوی نے کہا، ایسا ہے کہ حاکم وقت کے پاس جاؤ جو کھلے ہاتھ کا اور عادل شخص ہے، اور کسی کو بھی اپنے دربار سے نا امید واپس نہیں بھیجتا۔ اگر اس کے پاس جاؤ گے تو یقیناً وہ تمہاری مدد کرے گا اور ہم لوگوں کو اس تنگ دستی سے نجات مل جائے گی۔ شوہر یہ سن کر کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں کس بہانے سے خلیفہ کے پاس جاؤں؟ بیوی مسکرائی اور کہنے لگی، یہ کیسی بات کر رہے ہو، بہانہ کیا، ہم یہاں فقر و فاقے میں تنگ دستی سے سرب غریبہ ہیں، سوکھی روٹی پر گزارا کر رہے ہیں، برسات کے پانی کو پی پی کر رہ رہے ہیں۔ بہترین بہانہ یہی ہے کہ پانی کی یہ سراہی اٹھاؤ اور خلیفہ کو تحفے میں دے دو۔ یہ صحیح ہے کہ اس کا خزانہ جواہرات سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس نے ایسا شفاف پانی ہرگز نہ پیا ہوگا۔ بیوی نے اپنے طور پر ایک نادر تجویز پیش کی تھی، لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ بادشاہ کا قصر دریائے جیہون کے کنارے کھڑا ہے، اور جیہون کا پانی اتنا صاف و شفاف اور شیرین و خوشگوار ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ شوہر نے بیوی کی یہ باتیں سنی تو فوراً مان گیا کہ بارش کے پانی کے علاوہ ان کے پاس سلطان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ خوش ہو گیا اور اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، سچ کہہ رہی ہو، یہی بہترین ہدیہ ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ بدمزہ اور کھارا پانی پیا ہوگا، اس لیے اس خوشمزہ اور شیریں پانی کی یقیناً قدر کریں گے۔ ایسا
करो, अब इस सुराही को कपड़े में अच्छी तरह लपेट दो ताकि उसका पानी ठंडा रहे। बीवी उठी, सुराही को बारिश के पानी से भर दिया, उसके सर को खूब अच्छी तरह बंद किया और उसे कपड़े में लपेट कर अपने शोहर को दे दिया और कहा, अब जल्दी से रवाना हो जाओ, मैं भी दुआ कर रही हूँ कि सलामती के साथ वहाँ पहुँच जाओ, ये सुराही सही और सालिम सुल्तान तक पहुँचा दो। फिर उस शख्स ने सुराही उठाई, शॉल लपेटी और टोपी वगैरह पहनकर चल पड़ा। बीवी ने घर के दरवाजे पर खड़े होकर शौहर को दुआओं के साथ रुखसत किया। रास्ते में वो शख्स सुराही को बेहद एहतियात से लिए हुए था ताकि गिरने न पाए या चोरों और राहजनों से महफूज रहे। उधर बीवी भी मुसलसल दुआओं में मशगूल थी और खुदा से दुआ कर रही थी कि उसका शौहर और सुराही हिफ्ज़ो अमान में रहे। फिर वो शख्स दश्तो बियाबान से होता हुआ आखिरकार सुल्तान के दारुल खिलाफा पहुंच गया। वहां सुल्तान की दरगाह ऐसे आदमियों से भरी पड़ी थी जिनकी आंखें इस उम्मीद पर लगी हुई थीं कि सुल्तान उन्हें कुछ बख्श दे। जब वो शख्स कसर के नजदीक पहुंचा तो जरा ठिठक कर रह गया। शाह के उम्माल ने जो ही उसे देखा कि सुराही लिए हुए चला रहा है तो उसके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े और मेहरबानी के साथ उससे पेश आए। वो जानते थे कि वो पानी की ये सुराही हदीये के तौर पर सुल्तान के लिए लाया है। एक खादिम उसके पास आया और कहने लगा, ऐ मेहमान, आप कहाँ से आए हैं? ये अरब उन लोगों की मेहरबानी और गर्म रफ्तारी देखकर हैरान रह गया और अपने सफर की सारी मशक्कत और थकन भूल गया। फिर उसने कहा, मैं गरीब और गैर अहम इंसान हूँ, मैं यहाँ सिर्फ सुल्तान के लुत्फ करम की एक नज़र के लिए आया हूँ, मैं उससे मदद मांगने आया हूँ, लेकिन अभी से उनके लुत्फ करम का अंदाजा करके हैरत ज़दा हूँ। उस आदमी ने फिर अपने सफर का मकसद हाकिम के नजदीकी लोगों को बताया। वो लोग भी उसके सफर की इल्लत पूरी तरह समझ गए और उस शख्स का शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन दिल ही दिल में उस आदमी की सादगी पर हंसने लगे, लेकिन उस आदमी से कुछ न कहा। उन लोगों ने पानी की यह सुराही उस आदमी से ली और हाकिम के पास गए और उसकी पूरी कहानी बयान की। हाकिम थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर हुक्म दिया कि सुराही को जरो जवाहर से भर दिया जाए। हाकिम ने फरमान सादिर किया कि सुराही का पानी खाली करके जरो जवाहर से भर दें और इसके अलावा खलत और दूसरी कीमती चीजें भी उस आदमी को अता की जाए। फिर उसने अपने दरबारियों पर नजर डाली और कहा, ये जरो जवाहर से भरी हुई सुराही उसे वापस दे दी जाए, ये बेचारा तंग दस्त खुश्की के रास्ते बहुत सारा सफर तय करके आया है, उसकी रहनुमाई करो कि वो कश्ती के जरिए अपने घर की तरफ वापस जाए, क्योंकि ये राह नजदीक तर हो जाएगी। फिर हाकिम के दरबारी उस आदमी के पास आए, उसका शुक्रिया अदा किया और जरो जवाहर से भरी सुराही, खलत और दूसरी चीजें उसे पेश की। वो आदमी भी सुराही को देखकर बहुत खुश हुआ और उन सबका बेहद शुक्रिया अदा किया। फिर उम्माल उसे बेहद एहतराम के साथ ले गए और कश्ती पर सवार कराया ताकि वो अपने घर वापस जा सके। उस आदमी ने जब इस दरिया में इतना सारा पानी देखा तो समझ गए कि हाकिम के चारों तरफ इस कदर वाफर मकदार में पानी बह रहा है और मीठा पानी बह रहा है। پھر وہ اپنے لائے ہوئے تحفے کو دینے پر بے حد شرمندہ ہوا اور اس کے دل میں ندامت اور شرمساری بھر گئی، لیکن ساتھ ہی حاکم کی بخششوں کا قائل بھی ہوا اور حیرت زدہ بھی۔